खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम को सुने, पढ़ें, सीखें, आए हम चंद लम्हों के लिए खुदा के हुजूर झुक जाएं और खुदावंद की हिकमत और दनाई मांगेंगे, ताकि हम जो कुछ भी पढ़ें, सुने, समझें, उसे अपने दिलों में जगा देने वाले बनें और उस पर गौर व फिक्र करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें। सो हम खुदावंद के फजल के तख्त के सामने बड़ी हलीमी के साथ, फरोतनी के साथ झुक जाएं और उसकी अकल और दनाई को मांगें। कादरे मुतलक खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज की सुबह के लिए, सारी रात की हिफाजत और निगेबानी के लिए। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद खुदा, आज की दी गई तमाम नेमतों बरकतों के लिए। हम सबको संभाल और ख़ास कर खुदावंद जो कुछ तेरे कलाम में से हम सीखने वाले हैं, हम सब के लिए बरकत का, तरबियत का, नसीहत का और खुदावंद खुदा हौसला फजाई का वसीला बने और तेरा बेटा खुदावंद यसु मसीह नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। उसी के मुकद्दस और पाक नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम पहला दूसरा करंथियों 11वां बाप उसमें से इस सच्चाई को पालूस की ज़िंदगी के बारे में सीखें, जानें कि पालूस रसूल इन तमाम हालातों में से क्यों गुज़रा, पालूस रसूल को क्या पड़ी थी कि वो ज़िंदगी में इन तमाम दुखों का सामना करे। क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है और ये दुनिया की पढ़ी लिखी और समझी बात है कि कोई भी किसी के लिए कोई दुख उठाना नहीं चाहता। कोई भी किसी के लिए आज के दौर में कुछ भी करना नहीं चाहता, जिस दौर, जिस दुनिया में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने बेटे यसु मसीह को भेजा ताकि वो दुनिया की खातर कुर्बान हो, दुनिया की खातर जन्म ले, दुनिया की खातर इस ज़मीन पर उन तमाम दुखों और मुसीबतों का सामना करे, ताकि हम उसकी मोहब्बत और बरकत को पाने वाले बने जो उस पर ईमान लाने से हमें मिलती है। और यही बात और इसी सच्चाई ने और इसी अमल ने कि पालूस ने यसु मसीह की ज़िंदगी में देखा, उसके बारे में सुना कि उसने ये कुछ किया है, तो वो उस पर ईमान लाया और उसकी ज़िंदगी भी इसी तरह उसकी गवाही का वसीला बनी। सो इससे पहले कि दूसरा करंथियों हम उसका 11वां बाब देखें, मैं चाहता हूँ कि चंद एक आयात इफिसियों 3 बाब उसकी हम पहली आयत से पढ़ेंगे, 6-8वीं आयत तक। पालूस कहता है, इसी सबब से मैं भी, पालूस रसूल यहाँ पर वो अपने आप में अपने अपने बारे में बात करेगा और वो कहता है, इसी सबब से मैं पालूस, जो तुम गैर कौम वालों की खातर मसीह यसु का कैदी हूँ। शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतज़ाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ, यानी ये कि वो भेद मुझे मकाशफा से मालूम हुआ, चिनाचे मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूँ। वो पहली 4 आयात में बयान करता है, अपनी गवाही देता है किस वजह से वो मसीह का खादम बना। और इस दुनिया में कोई ना कोई वजह पाई जाती है कि हम जिंदा हैं। हम कहीं जगह पर, किसी जगह पर भी अगर काम करते हैं तो किस लिए करते हैं? क्योंकि हमें वहां से कुछ ना कुछ हासिल होगा। अगर किसी से कोई मोहब्बत करता है या किसी के लिए कोई भलाई करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है कि उसे कोई ना कोई फायदा हासिल होगा। हम जो मसीही हैं एक दूसरे से मसीह जैसी मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से मसीह का प्यार बांटते हैं और उसके लिए उसमें बहुत कुछ करते हैं, तो हमारे सब कुछ करने के पीछे यसु मसीह ने यह कहा है कि जो कुछ तुम जमीन पर करते हो उसका आसमान पर बहुत बड़ा अजर है। क्योंकि इंसान मसीही खिदमत का अजर नहीं दे सकता। हम नौकरी करते हैं, वहाँ से तो हमारी मजदूरी मिल सकती है। खेत में काम करते हैं, वहाँ से तो हमें फसल हासिल हो सकती है। अपनी दुकान करते हैं, वहाँ से तो हमें मुनाफा हासिल हो सकता है। किसी के साथ भलाई करते हैं तो मे भी हो सकता है कि हमारे साथ भलाई हो। लेकिन खुदा के निजाम में जब हम खुदा की रहनुमाई में चलते हैं तो खुदावंद ये बड़े ही वाज़ेह तौर पर कहता है कि अगर इवन अगर के आप एक प्याला पानी का भी किसी को पिलाएंगे तो उसका भी अजर नहीं खोएंगे। सो पालूस रसूल अपनी बारे में अपनी जिंदगी में उस मकाशफा उस वजह और उस बात के बारे में कहता है पहली चार आयात में कि वो क्यों मसीह का खादम बना और ये भेद उसे हासिल हुआ और उस भेद को उसने अपने तक महदूद ना रखा बल्कि दूसरों तक पहुंचाया। और पांचवीं आयत में कहता है जो और जमाने में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है। पालूस रसूल ने जो मकाशफा जो सच्चाई उसे मालूम थी उसे उसने अपने तक नहीं रखा, दूसरों को बताया। सो सवाल ये है कि जो कुछ हम सीखते हैं, जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ हम मसीह के बारे में जानते हैं, क्या हम दूसरों को बताते हैं या फिर शर्मते हैं कि लोग क्या कहेंगे? क्या हम अंजील की बिशारत देते हुए डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि ये मसीही है? क्योंकि पालूस कहता है रोमियो पहला बाप उसकी 16वीं और 17वीं आयत में, वो कहता है कि मैं अंजील की खुशखबरी सुनाने से नहीं शर्माता और कहता है वो भेद मैंने तमाम लोगों पर जाहिर कर दिया। और छठी आयत में वो कहता है कि वो भेद ना मैंने यहूदियों बल्कि तमाम लोगों तक पहुंचाया। और छठी आयत में कहता है यानी ये कि मसीह यसु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मीरास बने और बदन में शामिल और वादा में दाखिल हैं और खुदा के उस फजल की बख्शिश से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ मैं इस खुशखबरी का खादम बना। मैं उस खुशखबरी का खादम बना मुझ पर जो सब छोटों सब मुकद्दसों में छोटों से छोटा हूँ ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेकयास दौलत की खुशखबरी दूँ। पालूस रसूल यहाँ पर बार बार कहता है कि मैं छोटा जो सब मुकद्दसों में क्या कहते हैं कि खाकसार मैंने मसीह के फजल को और उसकी खुशखबरी को दूर दूर तक पहुंचाया। तो पालूस रसूल ने जब खिदमत की तो उस खिदमत को जब वो खुश था तब भी उसने कहा कि खुदावन तेरी तारीफ हो। जब वो दुखों की पहाड़ पर चढ़ रहा था या दुखों की वादी में से जिंदगी में से गुजर रहा था तब भी उसने कहा कि खुदावन तेरा शुक्र हो। बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत से लोग मिलते हैं जो सुख के वक्त कहते हैं खुदावन वाह वाह वाह, लेकिन दुख के वक्त बहुत से लोग कहते हैं कि खुदावन पर लानत करो। जिंदा मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा है अय्यूब और उसकी बीवी की मिसाल। अय्यूब ने लानत नहीं की लेकिन उसकी बीवी ने कहा कि तू लानत कर और मर जा। इसलिए हमें इन बातों को याद रखते हुए सबक सीखने की जरूरत है। सो छठी आयत में पालूस कहता है यानी कि मसीह में गैर कौमें वो कौमें जो खुदा से दूर थी, वो कौमें जिन्हें कोई भी बरकत कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि खुदा उन पर नजर करेगा। तो क्या हुआ? यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह को बाइबल मुकद्दस में बहुत से नामों से पुकारा गया है, इसलिए यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह को कहा गया है आफताबे। ताले होगा। आफताब कहा गया है यीशु मसीह को। आफताब का मतलब सूरज निकल, सूरज जिसे कहते हैं कि जैसे सूरज सब तारीकी पर बैठे हुए लोगों पर रोशनी डालता है, यीशु मसीह के बारे में भी कहा गया है कि आफताब ताले होगा और उसकी किरणों में शफा होगी। इसके बारे में हम मलाकी के जब सहीफा को देखते हैं तो वहां पर यह बात यीशु मसीह के लिए नबूवत के तौर पर लिखी हुई है कि आफताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी। जो कोई खुदावंत का नाम लेगा वो बरकत पाएगा। तो आए हम देखें कि पालूस की जिंदगी में जब बरकत थी तब भी उसने कहा कि मैं मसीह की खुशखबरी सुनाऊंगा। जब दुख थे तब भी उसने कहा कि मैं मसीह के काम को पूरा करूंगा। सो दूसरा करंथियों उसका जब हम 11वां बाब देखते हैं, पालूस रसूल करंथस की कलीसिया में बुतप्रस्त लोगों से घिरा हुआ है, उन लोगों से जो उस वक्त इर्तमस देवी की इबादत करते थे। उस वक्त बहुत बड़े बड़े मंदिर होते थे जिनमें लोग झुकते थे, वहां पर कुर्बानियां करते थे, वहां पर देवी देवताओं को मानते थे, बुतों की पूजा करते थे, और फिर बहुत ही उनका गंदा तरीकाकार था जब वो अपने देवताओं के सामने झुकते और उनकी इबादत करते थे। और उसके साथ साथ पालूस रसूल उन लोगों से घिरा हुआ था जो अबलीस के लोग थे, जो अबलीस की रहनुमाई में, शैतान की रहनुमाई में चलते थे और अपने आप को खादम कहते थे, लेकिन वो मसीह की मुखालफत करते थे। तो पालूस रसूल उनको जवाब देते हुए कहता है, पालूस रसूल कहता है 22वीं आयत में, क्या वही अब्रानी है? मैं भी हूं। क्या वही इसराइली हैं? मैं भी हूं। क्या वही इब्राहिम की नस्ल से हैं? मैं भी हूं। क्या वही मसीह के खादम हैं? मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं ज्यादातर हूं। पालूस रसूल यहां पर उनको कहता है, अगर वो अपने आप को इब्रानी कहते हैं तो मैं भी हूं, अगर वो मसीह का खादम कहते हैं तो मैं भी हूं, अगर वो अपने आप को इब्राहिम की नस्ल से कहते हैं तो मैं भी हूं, और कहता है कि ज्यादातर हूं, और कहता है जो मशक्कत, जो मेहनत, जो चीजों, जो हालात का उसे सामना हुआ, उन्होंने ऐसे हालात का सामना मसीह की खातर नहीं किया। उन झूठों के बारे में वो कलीसिया को बताता है और कहता है, मेहनत में ज्यादा पालूस रसूल क्या करता था? खैमे बनाता था, जिसे हम कहते हैं कि हमारे दौर में जिसे कहते हैं कि टेंटों को सीने वाले, वो उस दौर में टेंट बनाता था, ये उसका काम था। और इसी वसीला से वो मेहनत करके दूर दूर इलाकों में जाता था हदिया शुक्रगुजारी के वसीला से, और फिर बहुत से मजदूरों के साथ काम करते हुए जो पैसा कमाता था वो लोगों की ज़रूरियात के लिए और खुदा की खिदमत के लिए, खुशखबरी को फैलाने के लिए इस्तेमाल करता था। वो कहता है मेहनत में ज़्यादा, कैद में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अरसा उसने कैद में गुजारा मसीह की खातर, कोड़े खाने में हद से ज़्यादा, बारहा मौत के खतरों में रहा हूँ, उसे बहुत दफ़ा मौत के खतरों का सामना था। और कहता है मैंने यहूदियों से पांच बार एक कम 40-40 कोड़े खाए। यहूदी कौम में जो कोड़ों की सजा थी वो 40 कोड़ों का हुक्म था, लेकिन वो 39 कोड़ों पर ही रुक जाते थे ताकि वो शरीयत के मुताबिक कोई गुनाह ना कर लें कि उन्होंने एक कोड़ा ज्यादा लगा दिया। तो यीशु मसीह को हम देखते हैं कि एक दफा कोड़े लगे, और यहां पर पालूस की जिंदगी में पालूस कहता है कि मुझे मसीह की खातर 5 बार एक कम 40-40 कोड़े लगे, और मैं इंतजार कर रहा हूं कि जब हम इस जमीन के वतन से फारग हों तो पालूस के उस जलाली बदन को देखा जाए कि कैसे छली किया गया। यीशु मसीह के उस बदन को देखा जाए जिसमें जब हम उसे देखेंगे तो वैसे ही उसके हाथों में सराख होंगे, वैसे ही उसकी पछली छेदी होगी और वो जलाली हालत में होगा और देखेंगे कि वो कैसा है। बच्चों गौर से सुनो, और वो कहता है तीन बार बैंत लगे। ये बैंत बहुत ही तकलीफ दे बैंत होते थे जो उसे लगे। एक बार संसार किया गया पत्थरों से मारना, तीन बार जहाज टूटने की बला में पड़ा, एक रात दिन समंदर में काटा, बारहा सफर में, दरिया के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, कौम गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी में और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, तमाम कलीसिया की फिक्र मुझे हर रोज आ दबाती थी, हर रोज आ दबाती थी। पालूस रसूल ने मुख्तसर बातें लिखी है लेकिन कहता है बहुत सी बातें हैं जिनका मैं बयान नहीं कर रहा। सबसे बड़ी फिक्र भेड़ों को चराने वाले के चरवाहे को क्या होती है? अपनी भेड़ों की। यीशु मसीह की जिंदगी में हम देखते हैं यीशु मसीह हमें पूरी अपने 33 साल की जिंदगी में जब उसने खिदमत शुरू की तो वो 3 साल तक हमें देखते हैं, नजर आता है, खासकर पहाड़ों पर, बियाबान में और घर से बाहर क्या करता हुआ? अपनी भेड़ों की फिक्र करता हुआ। और यीशु मसीह ने इसीलिए बार बार कहा, बाइबल मुकद्दस में बार बार ये वाक्य आया है कि सब लोग अपने घर को गए और यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर, सब लोग के, यीशु मसीह ने यह भी कहा कि हवा के परिंदों के घोंसले होते हैं और लूंबड़ियों के भट, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं है। वो अपने घर आया लेकिन उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। यीशु मसीह ने यह भी कहा, यीशु मसीह की पैदाइश ही से शहर में किसी के पास रहने के लिए, मरियम को जगह देने के लिए कमरा ही नहीं था, तो उसकी पैदाइश कहां पर हुई? सराय में, चरनी में उसकी पैदाइश हुई, ना के सराय में। चरनी में खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म लिया। और पालूस रसूल कहता है कि मैंने इन तमाम खतरों का, मुसीबतों का सामना किया। किसकी खातर? मसीह की खातर। सो सवाल ये और याद दहानी ये है कि अगर हम आज मसीह की खातर दुख उठा रहे हैं तो मत्ती 5 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है कि अगर तुम मेरे नाम की खातर सताए जाते हो, दुख उठाते हो, तो खुश होना और शादमान होना, क्योंकि आसमान की बादशाही में तुम्हारा अजर बड़ा है। अजर के लिए बहुत से हवाला जात मिलते हैं, हमें जलाल का सेहरा मिलेगा, हमें इज्जत का ताज मिलेगा, हमें ज़िंदगी का ताज मिलेगा। जो यीशु मसीह की खातर सताए जाते हैं उनको खुदा के फरदौस में उस ज़िंदगी के फल में से खाने का मौका मिलेगा, खुदा की हजूरी में उनको वो सतून मिलेगा जिसके ऊपर नाम लिखा होगा कि इस बंदे ने अपनी ज़िंदगी ज़मीन पर ये दुख उठाए और ये उसका अनाम है। सो आज हम जो कुछ भी करते हैं उसे ये समझ के करें कि खुदावंद उसका अजर देगा। बेशक इस ज़मीन पर आपको कोई उसका अजर नहीं दे सकता, सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। और पालूस की ज़िंदगी का अजर आसमान पर भी और इस ज़मीन पर भी देखते हैं कि दुनिया भर में उसने मसीह की मनादी की, हम उसका अजर नहीं गिन सकते, खुदा ही है जो अजर देने वाला है। सो आए हम खुदावन के हजूर झुकें और कहें कि खुदा बाप, जैसे पालूस ने कहा कि मेरी मानद बनो जैसे मैं मसीह की मानद बना, हम भी मसीह की मानद बने ताकि हम भी कहने वाले बने कि तुम मेरी मानद बनो जैसे मैंने मसीह की मानद बनने की कोशिश की और उसके नक्शे कदम पर चला और चली हूँ। खुदा बाप आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे।